सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
गीता महाभारत के भीष्म पर्व में चैप्टर 25-42 के अंदर आती है। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और कुछ महात्मा कहते हैं कि तत्त्वमसि जो हम लोग का एक महावाक्य है उसमें पहले 6 अध्याय जो हैं त्वम पद का निर्देश करते हैं। त्वम पद मतलब जीव। दूसरे जो 6 अध्याय हैं 7-12 तक जो हैं वो तत्पद को भगवान के बारे में बताते हैं और 1318 तक जो हैं उसको हम लोग कहते हैं असी पद। असी मतलब जीव और ब्रह्म एक हैं। पहले 6 अध्याय त्वम पद, दूसरे 6 अध्याय तत्पद और लास्ट के 6 अध्याय जो हैं वो असी पद। जीव और ब्रह्म एक हैं। हम लोगों ने पहले श्लोक के अंदर देखा कि धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने सारी गीता में केवल एक ही श्लोक कहा है जो कि पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुस्व। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेता युयुस्व मामका पांडवास्य। क्या कर रहे हैं संजय तुम बताओ। ये घटना कहाँ हो रही है? कुरुक्षेत्र में। धृतराष्ट्र कहाँ बैठे हैं? हस्तिनापुर में, दिल्ली में। दिल्ली का पहले नाम हस्तिनापुर था तो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो। तो बोलते हैं कि मेरे को बताओ संजय। संजय का मतलब जो है आपके अंदर सम्यक जयति इति संजय। हमको जय की कुछ खबर दो। तो इसमें 4 वर्ड हमने उस दिन देखे थे जिससे जो है धृतराष्ट्र को लग रहा था कि मैं जीतूंगा। एक वर्ड था कुरुक्षेत्र। युद्ध कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। दिल्ली से करीबन 300 मील की दूरी पर है तो कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कुरु किस क्षेत्र किसका है? कौरव का है। तो कौरव का अगर है तो अपने ही क्षेत्र के अंदर अगर युद्ध हो कौन जीतेगा? कौरव जीतेंगे ना। यहां तो नहीं दिखाई पड़ता है आपको, भारत में बहुत दिखाई पड़ेगा। मोहल्ले मोहल्ले के अलग अलग कुत्ते होते हैं। जो जिस मोहल्ले का कुत्ता होता है उसकी पूंछ जो है ऊंची रहती है और दूसरे मोहल्ले का कुत्ता है उसकी पूंछ दबी रहती है। और इस मोहल्ले वाले दौड़ के कुत्ते वो जाएंगे उसको जब तक अपनी एरिया के बाहर ना कर दें तब तक वो दौड़ते रहेंगे। यहां भी आपको मिलेगा। यहां कुत्ते होते हैं फेंस के अंदर और जब तक फेंस के अंदर है वहां से चिल्लाते हैं, फेंस के बाहर नहीं आ पाते। तो अपनी एरिया के अंदर जो है कुत्ता भी शेर होता है। तो कुरुक्षेत्र में कौन शेर थे? कौरव शेर। तो धृतराष्ट्र सोच रहा था कि कुरुक्षेत्र में होने वाला है इसलिए हम जीतेंगे। धर्म क्षेत्र, क्योंकि ये धर्म युद्ध है इसलिए भी हम जीतेंगे। कैसे, इसके पीछे क्या युक्ति है? कौरव तो अधर्मी थे ना, तो धर्म क्षेत्र के हिसाब से वो कैसे जीत जाएंगे? तो इसके पीछे लोग कहते हैं ऐसा है कि अगर मान लीजिए वो अधर्म करने जाएं, पांडव अधर्म करने, पांडव धर्म के प्रतीक हैं, मान लो वो अधर्म करना चाहें तो उनकी सेना कितनी है? 7 अक्षौणी है, हमारी सेना 11 अक्षौणी है। तो इसका मतलब कौन जीतेगा? हम ज़्यादा अधर्म कर पाएंगे। तो धर्म के हिसाब से भी बोलते हैं वो हम जीत जाएंगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। समवेता, समवेता, समवेता मतलब कितने, कितनी सेना है, किनकी कितनी है। तो कौरव की सेना है 11 अक्षौणी, पांडवों की सेना है 7 अक्षौणी। एक अक्षौणी में कितनी सेना होती है? आप में से जो गणित अच्छा समझते हैं वो जरा लिखें। एक अक्षौणी सेना के अंदर में चतुरंगी सेना उस टाइम में हुआ करती थी। चतुरंगी मतलब घुड़सवार होंगे, हाथी होंगे, रथ होंगे और सैनिक होंगे। तो एक अक्षौणी सेना में कहते हैं कि 21,870 रथ होते हैं। आप लिखते जाइएगा 21,870। और हाथी कितने होते थे? हाथी भी 21,870, 21,870। ठीक है, घुड़सवार कितने थे? 3 × 21,870 = 65,610, 65,610 घुड़सवार। और पैदल सिपाही कितने होते थे? 5 × 21,870 = 109,350। अब इसका टोटल करो।
218,750।
वेरी गुड। अच्छा थोड़ा सा एक और काम करो, इन सबको जोड़ते जाओ, 2, 1, 3 and 8, 11 and 7, 18। हर डिजिट को जोड़ के उसके सामने उसका टोटल करो। 2 + 1 + 8 + 7 + 0 = 18 हुआ। दूसरा वो भी 18 है। तीसरा 6, 5, 11, 17, 1, 18। चौथा वो भी 18 है ना। अच्छा 18 को जोड़ करो तो क्या होगा? 1 + 8, 9, ऑल 9। 9 जो है हमारे यहाँ संख्या जो है पूर्ण संख्या कही जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद फिर 1 को लाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, तो 9 जो है वो कंप्लीट संख्या हम लोग बोलते हैं, पूर्ण संख्या। 9 जो है ब्रह्म का प्रतीक है और 8 जो है माया का प्रतीक है। 8 माया का प्रतीक है। कैसे आप कहते हो? तो यहाँ पर 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे बच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मेरी प्रकृति जो है जिसको हम माया कहते हैं वो कैसी है? बोले 8 चीज हैं उसमें, इसलिए माया हुई 8। माया का नंबर है 8 और ब्रह्म का नंबर 9 हो गया ना। अच्छा कितनी अक्षौणी सेना थी? 11 और 7, 18। आप जरा उसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाइड बाई 18 देखो कितना होता है। कितना हुआ?
3,936,600।
उसको भी जोड़ करो, ऑल डिजिट्स को जोड़ करो, 3 + 9 + 3 + 6 + 6 = कितना हुआ? कंप्यूटर फेल हो गया क्या आपका? कितना नहीं हुआ, गलती है। 3 3 + 9 + 3 + 6 + 6 कितना हुआ? 27 हो गया नहीं? देखो एक अक्षौणी सेना कितनी होती है। अच्छा इतने लोग वहां थे 39,36,600 इतने सिपाही थे। इसके पीछे उस युद्ध को चलाने के लिए और कितने पीछे लोग होंगे? इतने आदमियों को खाना खिलाना है, इतने घोड़े हाथी रथ को ठीक रखना है, कितने पीछे उसके बैकअप होंगे? हम पकड़ लेते हैं 40,00,000 आदमी थे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इस 40,00,000 आदमियों में मोर और लेस सारे के सारे मेल हैं, फीमेल तो नहीं है ना? एक भी फीमेल नहीं। युद्ध होगा और युद्ध में से 5-6 आदमी छोड़ के बाकी सब मारे जाएंगे। कितनी विधवाएं होंगी? 40,00,000। तो ये आपको हमने एक अक्षौणी सेना के बारे में बताया। समवेता, तो समवेता मतलब इतने लोग अगर हैं तो कौरव की सेना ज्यादा है, 11 अक्षौणी है, पांडव की 7 है, तो कौन जीतेगा पावर के हिसाब से? युधिष्ठिर, चौथा वर्ड है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं। उत्साह किसमें ज्यादा है? तो धृतराष्ट्र का कहना है कि धर्म क्षेत्र के हिसाब से कुरुक्षेत्र मेरा क्षेत्र है, उसके लिए युधिष्ठिर उत्साह मेरे लोगों का ज्यादा है, और समवेता में उनके पास में कम सेना है, मेरे पास ज्यादा सेना है, तो जय किसकी होगी? मेरी होगी। संजय तुम मेरे को अब जो है संवाद सुनाओ। तो कौन कौन वहां है? तो कहते हैं मामका पांडवाश्चैव, मामका मेरे लोग हैं, पांडव जो उनके भतीजे हैं वो मेरे नहीं हैं, वो पांडव हैं, बाकी कौरव पक्ष वाले मामका ये मेरे हैं, मामका पांडवाश्चैव। किम अकुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं बताओ? अब संजय को जो है दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो दिव्य दृष्टि कैसी थी? वो दिव्य दृष्टि ऐसी थी आपका जैसा दूरदर्शन है ना, वैसा जो है आज से 5,300 साल पूर्व ये था। दिल्ली में बैठकर संजय कुरुक्षेत्र में जो घट रहा था वो देख रहा था, कैमरा नहीं था वहाँ उसके पास में, मगर इस दिव्य दृष्टि की और एक खासियत थी, जो घटना घट रही थी वो भी देख रहा था, और हर व्यक्ति के मन में क्या वृत्ति आ रही थी वो भी वो जान सकता था संजय। इस वास्ते आप देखेंगे कई जगह जो है ऐसी ऐसी घटना आएगी कि उसके मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई नहीं जानता है, मगर संजय को पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये है दिव्य दृष्टि। उसके बाद क्या हुआ, संजय क्या कहते हैं?
संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्, ब्यूढं दुर्योधनस्तदा, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत।
देखो सामान्य धर्म एक होता है, जैसे अगर आपको अपनी स्वास्थ्य रखना हो तो आपको अंग का पोषण करना होता है, नरिश करना होता है, खाना होगा पीना होगा। मगर आपद धर्म क्या होता है? आपद धर्म होता है कि अगर आपके शरीर में कुछ रोग हो गया है तो आप उस अंग को काटने को भी तैयार हो जाते हो। सामान्य धर्म क्या है? हर अंग का पोषण करना है, नरिश करना है। मगर आपद धर्म क्या है? अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया, पाँव में गैंग्रीन हो गई, अब क्या करना होगा? काटना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने भी बहुत सी चेष्टा की कि ये युद्ध ना हो। उसके लिए साम दाम दंड भेद का उन्होंने उपयोग किया कि ये युद्ध ना हो, मगर कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा। अब जब सब खड़े हैं तो दृष्ट्वा तु पांडवानीकम बुद्धर्म दुर्योधन सदा, संजय कह रहा है कि देखो दोनों तरफ के लोग खड़े हैं, उस टाइम में वो क्या देख रहा है? राजा दुर्योधन आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? आचार्य उपसंगम्यम, आचार्य द्रोण के पास आ रहे हैं। अच्छा, आके क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानिकम पांडवों की निकम, सेना, पांडवों की सेना देख रहे हैं। व्यूढ़म मतलब उनकी रचना कैसी हुई है, ये देख के दुर्योधन अपने आचार्य, उनके आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य, उनके पास आके कह रहे हैं वचनम अब्रवीत, ये कहा उन्होंने। अब ये भी उसको सुनाई पड़ रहा क्या कहा दुर्योधन ने।
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं च मूं, आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता,
तव शिष्येण धीमता।
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
राजा दुर्योधन आ रहा है आचार्य के पास में। देखो एक एक वर्ड जो है ना, इसको बड़े चुन के लगाया हुआ है। शिष्य दुर्योधन ने कहा, जा रहा है आचार्य के पास, अपने गुरु के पास जा रहा है। किस हिसाब जा रहा है? राजा दुर्योधन, उसका गर्व कितना है। और आके कहता है पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती चुम, पश्य देखो आचार्य, तुम देखो क्या है, पांडुपुत्राणाम महती चमू, पांडु पुत्र जो है, जिन्होंने बनाया व्यू बनाया है, महती बहुत सा उन्होंने व्यू अच्छा बनाया हुआ है, महती चमू आचार्य देखो। किसने बनाया? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन, ये इसका बनाने की रचना करने वाला कौन है? द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न है, उसने बनाया है। कौन है वो? तब शिष्य न, तुम्हारा शिष्य है। कैसा शिष्य? धीमताम, बुद्धिमान शिष्य ने बनाया है। ये कटाक्ष है दुर्योधन का गुरु के प्रति, तुम्हारा शिष्य, बुद्धिमान शिष्य, जिसको तुमने पढ़ाया है, वो देखो उधर क्या कर रहा है, तुम्हारा शिष्य कैसा है, तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा है। अच्छा, जब दुर्योधन आया है ना, तो उसके भीतर में एक भय है। कैसा भय है? देखो भीतर में कोई आदमी अगर गलत काम करता है ना, तो उसके भीतर में भय रहता बराबर। अब प्लस ये आचार्य को बोल रहा है और आचार्य कुछ बोलते नहीं है, कोई उत्तर नहीं देते हैं, उसको इरिटेशन हो रही है। देखो इमोशंस एक के बाद कैसे उसके इमोशंस भीतर आ रहे हैं। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रे न तब शिष्य न धीमता, आपका शिष्य है। अब वो देखो ऐसी रचना कर दिया है, बुद्धिमान आपने कैसे शिष्य को पढ़ाया, इसका मतलब आप आचार्य हो, आपको अपने शिष्य को पहचानने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, किसको ज्ञान देना है नहीं देना है आपने नहीं देखा ठीक से। अच्छा मैं देखता हूँ उस तरफ में कौन कौन है, क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तब देखते हैं, तीन श्लोक हैं।
अत्र शूरा महेश्वासाः अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः।
अत्र सूरा महेश्वासा, अत्र यहाँ, सूरा वीर लोग, बहुत सूर, महेश्वासा माइटी आर्चर, अर्थात धनुर्धर। कौन कौन है? भीम अर्जुन समा, भीम अर्जुन, वो दूसरे तरफ के लोगों को देख रहा है। भीम अर्जुन समायुधि, युयुधानो सात्यकी, सेनापति अभियादव सात्यकी, विराट, द्रुपद, महारथ किसको कहते हैं? देखो, महारथ कहते हैं जो सिंगल हैंडेडली 10,000 और मोर सोल्जर के साथ में फाइट कर सकता है, महारथ। तो इतने महारथ उस तरफ में है। और अतिरथ किसको कहते हैं? जो 1,000 से लेके 10,000 के लोगों तक फाइट कर सकता है। और रथी किसको कहते हैं? जो 1,000 के नीचे इतनी सेना को एक साथ फेस कर सकता है। तो महारथी उनकी तरफ कितने हैं वो सब गिना रहा है। युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, युधमन्यु और उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र। कोई बताएगा द्रौपदी के पांच पुत्र? चलो लिख लो, आपको मिलेगा नहीं जल्दी। युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिबिंध, भीम का पुत्र सुतसेन, अर्जुन का पुत्र सुत कीर्ति, नकुल का पुत्र सतानीक और सहदेव का पुत्र सुतकर्मा, ये भी उसमें युद्ध में खड़े हुए थे। और ये सब के सब क्या है? सर्व एव महारथा, इतने लोग महारथी उस तरफ में हैं। कितने महारथी का नाम गिनाया? 17 हैं, 17 महारथी का नाम उसने गिना दिया। उसके बाद
अस्माकं तु विशिष्टाय तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघार्थं तान् ब्रवीमि ते
अस्माकं हमारी तरफ में कौन कौन है आपको बताते हैं, विशिष्टा प्रधान प्रधान लोगों के नाम बताएंगे। अच्छा, किसके लिए? तान निबोध आपको बताना है। देखो उसके आचार्य उसके पास हैं, उसकी तरफ में हैं, वो कहता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे तरफ में कौन कौन है, एज इफ आचार्य को नहीं पता है कि इस तरफ में कौन कौन महारथी हैं। तान निबोध द्विजोत्तम, देखो ये भी कटाक्ष है, द्विजोत्तम। द्विजोत्तम किसको कहते हैं? द्विज माने ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण को द्विज कहते हैं? ट्वाइस बॉर्न। एक बार तो जब जन्म होता है और दूसरा जब गायत्री मंत्र मिलता है, जब उपवीत पहनाते हैं, जब थ्रेड सिरोमनी होती है, तब हम लोग कहते हैं ये दूसरा जन्म हुआ, उसको द्विज कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। दांत भी हैं वो द्विज हैं, है ना? एक पहले दूध का दांत होता है, उसके बाद में फिर दूसरे दांत आते हैं, वो सारा जीवन रहते हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ते। और हमारे गुरु जी कहते हैं जब बुढ़ापा आता है, जब आप कुछ जानना हो कि बुढ़ापा आया कि नहीं, बोले तब जो है दांत और आप अलग अलग सोते हो। रात को दांत खोल के सोते हैं, दोनों अलग अलग सोते, तब समझ जाओ आपको बुढ़ापा आ गया। द्विजोत्तम, देखो इसमें भी कटाक्ष है, आप ब्राह्मणों में उत्तम हो, आप लड़ने के लिए आए हो, लड़ने का काम किसका है? छत्री का। आप कौन हो? आपको नहीं मालूम है कैसे लड़ाई करनी है। द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रबीमते, हमारी तरफ में जो जो है, मम देखो अपना ईगो दिखा रहा है, मेरी तरफ में कितने हैं उसको मैं आपको बताता हूं। जैसे ही उसने कहा ये सब बातें कहीं, तो आचार्य का जो है कान लाल हो गए, आचार्य कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कभी कभी पति पत्नी को कुछ थोड़े से अपशब्द कह देता है और पत्नी का चेहरा लाल हो जाता है, फिर पति क्या करता है, चुप से आस्ते से फिर धीमी आवाज कर लेता है ना, लेवल नीचे आ जाता है। वैसे ही हुआ अभी इसका, क्या हुआ?
अन्ये च
भवान्
भीष्मश्च कर्णश्च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च, कृपश्च समितिञ्जयः, कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा विकर्णश्च, सोमदत्तिस्तथैव च, सोमदत्तिस्तथैव च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च, कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च, सोमदत्तिस्तथैव च।
हमारी तरफ में कौन कौन है? उधर कितने नाम सुनाए थे? 17। अच्छा यहाँ देखो कितने सुनाते हैं, यहाँ पर उन्होंने केवल 7 सुनाए अपनी तरफ में, 11 अक्षौणी सेना में केवल 7। कौन है? भवान, आप। देखो अब मस्का मार रहा है, पहला नाम आप है। अच्छा फिर दूसरा भीष्म पितामह, नंबर 2। कर्णश्च, कर्ण भी है उस तरफ में, 3। कृपश्च, कृपाचार्य उनके कुलगुरु, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का रिलेशन मालूम है आपको? कृपाचार्य की मैरिड टू द्रोणाचार्य, रिलेटिव। कृपश्च, समितिंजय, ये सब के सब संग्राम में विजयी लोग हैं, इनका रिकॉर्ड जो है आगे का बताता है कि ये सारे के सारे संग्राम में विजयी हुए हैं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का लड़का था। विकर्णस्य, विकर्ण कौन था? सन इन लॉ। विकर्णस्य सोमदत्तिस तथैव च, और सन ऑफ सोमदत्त भूरिश्रवा। 7 नामों में 4 नाम द्रोणाचार्य और उसके रिलेटिव के हैं, बताओ मस्का मारा कि नहीं? अच्छा फिर
अन्ये च बहव शूराः
अन्ये च बहव शूराः
मदर्थे त्यक्त जीविताः
मदर्थे त्यक्त जीविताः
नाना शस्त्र प्रहरणाः
नाना शस्त्र प्रहरणाः
सर्वे युद्ध विशारदाः
सर्वे युद्ध विशारदाः अन्ये च बहव शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः
अन्ये च बहव शूराः और बहुत से शूरवीर हमारी तरफ हैं बहुत हैं नाम नहीं है बहुत से सूरवीर हैं मदर्थे तख्त जीविता मेरे लिए मरने को तैयार है लोग आपके लिए नहीं और किसी के लिए नहीं ये जितने लोग आए हुए हैं वो मेरे लिए जीवन देने को तैयार हैं अहंकार उसका मदर्थे तख्त जीविता नाना शस्त्र प्रहर नाहा ये नाना शस्त्र चला सकते हैं धनुष भी चला सकते हैं तलवार भी चला सकते हैं भाला भी चला सकते हैं और लाठी भी चला सकते हैं नाना रस्त्र कैसे हैं सर्वे युद्ध विशारदाहा सबके सब युद्ध में विशारद हैं अब अम्मा को मालूम होगा संगीत विशारद होता है कुछ होता है ना कुछ ये सारे युद्ध में विशारद हैं देखो इनको यहां पर सर्वे युद्ध विशारदा कहा महारथी नहीं कहा किसी को महारथी अतिरथी या रथी नहीं कहा इन्होंने सबने विशारद किया हुआ है ये निपुण है इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है पूरी ये हमारी तरफ के लोग हैं अच्छा फिर और
अपर्याप्तम तदस्माकम अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम
बलम भीष्माभिरक्षितम
पर्याप्तम त्विदमेतेषां पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम
बलम भीमाभिरक्षितम
अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम
अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम हम लोग का बल बल मतलब सेना हमारी सेना अपर्याप्त अनलिमिटेड है क्यों हमारे पास 11 अक्षौनी है उनके पास 7 है तो हमारी अनलिमिटेड है अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम और ये किसके गाइडेंस में है भीष्म के अंदर और दूसरे उनकी तरफ पर्याप्तम हमारी अपर्याप्त अनलिमिटेड और उनकी पर्याप्त लिमिटेड तो कौन ग्रेटर है कौरव हम लोग तू इदम एतेसाम बलम भीमा विरचितम उस तरफ कौन है भीम है और हमारी तरफ भीष्म पिता है देखो उन दोनों में फर्क है भीष्म पितामह के पास में इच्छा मृत्यु थी तो वो सुपीरियर है तो कुछ संत महात्मा लोग इसको जो है दूसरी तरह से भी इसको निकालते हैं इसका माने चूंकि दुर्योधन डरा हुआ है इसलिए अपर्याप्तम का मतलब होता है नॉट सफिशियंट पर्याप्त मतलब सफिशियंट उनकी सफिशियंट है मेरी नॉट सफिशियंट एकदम उल्टा मतलब हो गया अपर्याप्तम एक का मतलब हुआ अनलिमिटेड उनकी लिमिटेड पहला मीनिंग दूसरा मीनिंग अपर्याप्त नॉट सफिशियंट हमारी नॉट सफिशियंट उनकी सफिशियंट है उसके बाद
अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
दुर्योधन अब ऑर्डर दे रहा है अपनी सेना को कि आपको क्या करना है, तो कहते हैं अयनेषु चर्वेषु सर्वेषु, इस मोर्चे में जो लोग भी जहाँ जहाँ खड़े हुए हैं, सर्वेषु ऑर्डर जनरल ऑर्डर फॉर एप्लीकेबल टू एवरीबडी, कि सबको क्या करना है, यथा भागम अवस्थिता, जो जो अपने अपने भाग में डिवीजन में खड़े हैं, सबका अलग अलग डिवीजन है, घुड़सवार अलग हैं, रथ अलग खड़े हुए हैं, हाथी अलग खड़े हुए हैं, सबका अपना अपना डिवीजन है, तो जहाँ जहाँ जो जो डिवीजन है, जो जो डिवीजन में खड़े हैं उनका एक काम है, भीष्म एव अभिरक्षन्तु, एव मतलब अलोन, एक काम भीष्म की आपको रक्षा करनी है, भीष्म जहाँ जहाँ जाएंगे जिस डिवीजन में जाएंगे आपका पहला कर्तव्य है उनकी रक्षा करना, और किसी की रक्षा कोई दरकार नहीं है, आचार्य की रक्षा की कोई दरकार नहीं है, आपको काम क्या करना है, भीष्म की रक्षा होनी चाहिए। अभी भवंत सर्व ए भी, यही आपका एकमात्र काम है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पुलिस वालों का क्या काम होता है, एक काम, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी केवल रक्षा करनी है और किसी की रक्षा नहीं करनी है, ठीक वैसे ही उनको कहा गया है। तो ये देख के भीष्म पिता को पता लग गया कि ये दुर्योधन अब कोलैप्स करने वाला है, इसको अगर हम थोड़ा सा भी और समय देंगे तो ये अभी गिर जाएगा, और उसको उत्साहित करना है, तो उन्होंने क्या किया,
तस्स संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् तस्स संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्
कुरु वृद्ध पितामह प्रतापवान्। भीष्म पितामह ने क्या किया, तस्य संजन हर्षन, उसके उत्साह बढ़ाने के लिए, उसके हर्ष के लिए, किसके हर्ष के लिए, दुर्योधन के हर्ष के लिए, उन्होंने सिंहनादं विनोदचम शंखं दद्मौ, उन्होंने अपना शंख बजा दिया। कैसा शंख था वो, बोले सिंह की नाद गर्जन, और विनोदचय उच्च स्वर में, जितना स्वर उसका उच्च हो सकता था उतने उच्च स्वर में भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। वार किसने पहले डिक्लेयर की, कौरव ने, भीष्म पितामह ने शंख बजाया ना, कितनी जोर से बजाया, पूरी जोर से लगाया, तो हुई इज एग्रेसर कौरव, डिफेंडेंट कौन है, पांडव हो गए। किसने शुरू किया, अधर्म वालों ने। जब भी समाज में कभी झगड़ा होता है ना, कोई अगर बहुत जोरों से चिल्लाए, समझ लेना वो अधर्मी है। जब भी फाइट शुरू होती है ना, अधर्मी जो है बहुत जोर से चिल्लाता है, जोर गले से जो है वो कहेगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, अधर्म ने पहले जो है शंख बजा दिया। फिर क्या हुआ,
तत शंखाश्च भैर्यश्च
ततशङ्खाश्च वीर्यश्च
प्रणवानकगोमुखाः प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत सशब्दस्तु मुलो भवत ततशङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत
ततः तत मीन्स् देयर् आफ्टर् उसके बाद किसके बाद भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद फिर क्या हुआ शंखाश्च बहुत से शंख बजने लगे। देखो सब अपने डिवीजन के सब के हमारे आर्मी के अपने अपने बैंड होती हैं उनकी अपने अपनी धुन होती है सब के अपने अपने होते हैं तो सब तरफ के उनके डिवीजन के जितने लोग थे सब अपना अपना शंख बजाने लगे। वैरियश्च वैरियस मतलब कैटल ड्रम अपने अपने कैटल ड्रम बजाने लगे। पनवानक पनवानक अनदर ड्रम गोमुखा सिंघा होता है आपके साउथ में होता है ना ये बड़े बड़े सिंह होते हैं ना बजाते हैं वो करके सिंघा गो सिंघा गोमुखा सहसा एव अभ्यंत सब एक साथ बजाने लगे। और बजाने के बाद में फिर कैसा शब्द हुआ तो संजय डिस्कस कर रहे हैं संजय डिस्क्राइब कर रहे हैं तो बोलते हैं तुमुल शब्द भगवत तुमुल ट्रिमेंडस सॉन्ग कौरव तरफ की 11 अक्षौनी सेना के जितने डिवीजन थे प्रत्येक डिवीजन ने अपने अपने ड्रम बजाए और बजाने के बाद में जो साउंड हुआ उसके लिए केवल एक वर्ड यूज किया जिसका तुमुल ट्रिमेंडस साउंड। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ
तत्श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्ख्यौ प्रदत्मतुः दिव्यौ शङ्ख्यौ प्रदत्मतुः ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः
ततः स्वैतै हयै युक्त महति स्यन्दने स्थितौ माधव। दूसरी तरफ सफेद घोड़ों वाले रथ में जो बैठे हुए माधव थे महति चंदन किसको कहते हैं महति चंदन वो ग्रेट रथ जिस पर विजय पाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उस रथ के ऊपर में हनुमान जी बैठे हुए हैं पताका के ऊपर में और महति चंदन उसको कहते हैं कि जिसके अंदर विश्राम करने की जगह हो जिसमें वेपन रखने की जगह हो जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स हो। मैंने कहा ऐसा लिखा हुआ शास्त्र में उस जमाने में भी ऐसा होता था। अब बांध चलेंगे तो घाव हो सकता है तो घाव होने से फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए तो चिकित्सा की भी व्यवस्था उसमें थी अब विश्राम भी कर सकते हो। तो माधव पांडव से दिव्य शंखो प्रदत्त तो माधव पांडव पहले किसने शंख बजाया माधव ने कौन है माधव भगवान है। उधर भीष्म पितामह ने बजाया इधर पांडव के पहले माधव ने और उसके साथ अर्जुन ने ये दोनों उस रथ पर बैठे हुए थे तो इन्होंने जो है उसका जवाब दे दिया कि इन्होंने भी शंख अपने अपने बजा दिए। कैसे शंख थे दिव्य शंख थे वो सब। अब उनके शंख के नाम वगैरह बताएंगे। देखो उधर के संघ का नाम हम नहीं बताया संजय देखो किस पार्टी का है ये आपको पता लग जाना चाहिए ये उनके विवरण से पता लग जाना चाहिए कि संजय किस पार्टी में है। अब वो बता रहा है
पांच जन्यम ऋषिकेशः पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दत्मो महाशंखम पौंड्रम दत्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दत्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः
पांचजन्यम ऋषिकेशः ऋषिकेश माधव ऋषिक ईशा जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर जय कर दिया है उसको ऋषिकेश कहते हैं। उनके संघ का क्या नाम? पांचजन्य। उन्होंने अपना संघ बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन, उसने कौन सा संघ बजाया? देवदत्तम, देवदत्तम उसको इंद्र ने संघ दिया था, दिव्य संघ है देवदत्त। धनंजय, क्यों धनंजय नाम इसका आया? युद्ध के बाद में राजसूय यज्ञ करना था, युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था और उसने कहा कि राजसूय यज्ञ करने में जो पैसे खर्च होंगे वो हमारे पैसे होने चाहिए। हम जो है राजा के कोष के, जो राजा से राज्य में जो कोष है उसके पैसे हम नहीं व्यवहार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो प्रजा से पैसे आए हैं, टैक्स के हैं। उसको पैसे को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो उसका बेनिफिट पुण्य प्रजा के पास चला जाएगा, हमको अपने इकट्ठे करने हैं पैसे। फिर भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, राजसूय यज्ञ के लिए जो जो कुछ चाहिए, सोने के पात्र वगैरह, अभी तो हम लोग तांबे के यूज करते हैं, कभी कभी चांदी करते हैं, उस जमाने में सोने के पात्र होते थे। तो सोने के पात्र अब कहाँ से मिले, पैसे चाहिए। तो भगवान ने कहा कि किसी ने एक यज्ञ किया था, उसका यज्ञ हो गया, वो वहीं फेंक फाँक के चला गया है, तुम जाओ उस दिशा में, नॉर्थ में जाओ, उत्तर दिशा में जाओ, वहाँ मिलेगा तुमको। और अर्जुन जाके लेके आया, इसलिए उसका नाम पड़ा धनंजय। तो धनंजय जो है वो पैसे वो वहाँ से सब लेके आया था, उसके बाद में राजसूय यज्ञ हुआ। तो धनंजय ने देवदत्तम नाम का संघ बजाया और पौंड्रम ददत्नो महासंखम, पौंड्रम नाम का संघ किसने बजा दिया? भीमकर्मा वृकोदर, भीमकर्मा, भीम ने जो वृकोदर है, वृकोदर वृक मतलब वुल्फ। अच्छा वुल्फ क्या करता है? ही कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। वृकोदर तो वैसे भीम जो है, भीमकर्मा बहुत काम करने वाले, खतरनाक काम करने वाले भीमकर्मा ने, उन्होंने अपना पौंड्र नाम का संख बजा दिया। देखो सबके संख के नाम बता रहे हैं और आगे बता रहे हैं। फिर
अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलसह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ, सुघोषमणि पुष्पकौ, अनंत विजयं राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलसह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ।
अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, अनंत विजय नाम का जो संख था वो किसने बजाया? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर कौन? राजा। अभी देखो युद्ध खत्म नहीं, शुरू ही नहीं हुआ है और संजय कहता है युधिष्ठिर को राजा। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का संख बजाया और नकुल सहदेव ने, नकुल ने सुघोष, सुघोष मतलब घोष, साउंड सु, स्वीट साउंड, नकुल का संघ था सुघोष। और सहदेव मणिपुष्प का, मणिपुष्प का वेरी गुड टू लुक एट, ब्यूटीफुल सॉन्ग मणिपुष्प का बजाया। अच्छा फिर
काश्यश्च परमेश्वासः, काश्यश्च परमेश्वासः, श्रीखंडी च महारथः, श्रीखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक्
काश्यश्च परमेश्वास काशीराज कौन है ये परमेश्वास श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उन्होंने शिखंडी च महारथ शिखंडी ये सब महारथी हैं। देखो इनके महारथी के नाम बता रहे हैं किन किन के शंख बजाए ये भी बता रहे हैं। कौन बता रहा है किस साइड का रिपोर्टर है महारथ है धृष्टद्युम्न विराट राजा विराट सात्यकी अपराजित है अपराजित ये थे। अच्छा द्रुपद द्रौपदायश्च द्रुपद राजा द्रुपद द्रौपदायश्च द्रौपदी के पुत्र पांच पुत्र के नाम हमने बताए आपको। ये सर्वश पृथ्वीपते हे धृतराष्ट्र इन लोगों ने ये शंख बजाए हैं। सौभद्रश्च अभिमन्यु महाबाहु शंखान दधनु पृथक पृथक सबने अपने अपने शंख बजा दिए। फिर क्या हुआ
सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानिवदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
जब इन्होंने बजाया तो कितनी ध्वनि हुई कितना साउंड हुआ सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानिवदारयन। जब उन्होंने बजाया तो धृतराष्ट्र के तरफ वालों के लोगों के हृदय फट गए इतना जोर शब्द था और कितना वाइब्रेशन हुआ। तो कहते हैं नभश्च पृथ्वीं चैव आकाश और पृथ्वी जो है कांप गई वाइब्रेशन हुआ और उधर धृतराष्ट्र के लोगों के दिल। और जब उनका वर्णन कर रहा था तो संजय ने कितना कहा तुम शब्द केवल कहा यहां पर चैव तुमलो व्यनुदान ऐसे बजाने से इतना शब्द हुआ। कितने लोगों ने बचाया सात अक्षौणी सेना वालों ने और 11 अक्षौणी सेना वालों के जब शब्द हुआ तुमुल छोटा सा थोड़ा सा हुआ और यहां पांडवों को जब बजाया। देखो संजय जो है ना इंगित करता जा रहा बहुत देर तक वो इंगित करता जाएगा कि धृतराष्ट्र ऐसा हो रहा है तुम जरा सोचो तुम राजा हो महीपते हो अभी भी तुम कह दोगे कि स्टॉप वार अभी रुक जाएगी ये क्योंकि तुम राजा हो। मगर राजा ऐसा था वो आंख से भी अंधा था और भीतर से भी अंधा था वो नहीं ले पाया। और एक ऐसी जगह पर आकर बताएंगे आगे बहुत 10वें 11वें अध्याय में आएगा कि जहाँ पर जाके उसने सीधा कह दिया कि आपके ये सारे के सारे मरने वाले हैं हारने वाले हैं आप अभी भी बंद कर दो इस युद्ध को। मगर कहते हैं कि भगवान ने ऐसा किया कि ये शब्द संजय के धृतराष्ट्र ने सुने ही नहीं इतनी दूर तक संजय कहते हुए चला गया कि अब भी रोक दो तुम्हारे सारे पुत्र बच जाएंगे मगर सुना ही नहीं उसके कान में नहीं गया।
हम अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते
धनुरुद्यम्य पाण्डवः
धनुरुद्यम्य पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यं
ऋषिकेशं तदा वाक्यम्
इदमाहमहीपते
इदमाहमहीपते
अथ व्यवस्थान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रं कपिध्वजः कपिध्वजः फ्लैग जिसके ऊपर में कपि था हनुमान जी चित्र था कहते हैं हनुमान जी बैठे हुए थे वहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए थे बोलते हैं कि दो काम कर रहे थे ये सब महात्माओं की चिंताएं हैं एक तो वहाँ बैठे बैठे वो रक्षा कर रहे थे और दूसरा कहते हैं कि वो साउंड को एम्पलीफाई कर रहे थे इधर जितनी साउंड हो रही थी उसको एम्पलीफाई कर देना काम हनुमान जी बैठ के ऊपर से कर रहे थे तो अथ व्यवस्थान दृष्टा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः ये मोर्चा बांधे हुए सब लोगों को देखने के बाद में धार्तराष्ट्रं कौरव पक्ष को अर्जुन ने कपिध्वज अर्जुन ने कहा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव पांडव अर्जुन ने अपना धनुष उठाया गांडीव प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव उठाकर देखो उत्साह था उस टाइम में पूरा ये यहाँ पर आपको पकड़ लेने की बात है कि अर्जुन का उत्साह उस टाइम कितना था उठाकर वो कहता है ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम हा महीपते ओ महीपत ओ धृतराष्ट्र आप अर्जुन जो है उस टाइम में ये वाक्य कहे क्या कहे ये हम लोग अगले दिन देखेंगे उसने भगवान को कुछ कहा क्या कहा भगवान कौन थे सारथी थे सारथी मन ड्राइवर उसने अपने ड्राइवर से कहा क्या कहा अगले दिन देखेंगे ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः
हरि
अभी तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए आपका अभी तो कुछ नहीं अभी कल शंख बजे हैं तो कुछ हुआ नहीं है हाँ वो तीन हैं वहाँ पर तीन लाइन है
वो अगले श्लोक का पहला लाइन उसके साथ जाता है तो नेक्स्ट उसमें देखिएगा तीन एक साथ है
दूसरा भी तीन एक साथ आएगा
तो इसी श्लोक का लास्ट लाइन और नेक्स्ट श्लोक के दो लाइन एक साथ जाता है मीनिंग उसका वैसे जाता है
अधिक बोल सकते हैं अधिक वर्ड
अधिक बोल सकते
हैं
अधिक बोल सकते
Context is the word.
कैमरा
sentences a dollar donation to the mission